दूसरा तवारीख 34वां बाब। योशिया 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 31 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसने वो काम किया जो खुदावन की नजर में ठीक था, और अपने बाप दाऊद की राहों पर चला और दाहने या बाएं हाथ को ना मुड़ा, क्योंकि अपनी सल्तनत के 8वें बरस जब वो लड़का ही था वो अपने बाप दाऊद के खुदा का तालिब हुआ, और 12वें बरस में यहूदा और यरूशलेम को ऊंचे मुकामों और यसरियतों और खुदे हुए बुतों और ढाली हुई मूर्तों से पाक करने लगा, और लोगों ने उसके सामने बालेम के मजबों को ढा दिया और सूरज की मूर्तों को जो उनके ऊपर ऊंचे पर थीं, उसने काट डाला, और यसरतों और खुदी हुई मूर्तों और ढाली हुई मूर्तों को उसने टुकड़े टुकड़े करके उनको धूल बना दिया, और उसको उनकी कब्रों पर बथराया जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियां चढ़ाई थीं, और उसने उन काहिनों की हड्डियां उन्हीं के मजबों पर जलाई, और यहूदा और यरूशलेम को पाक किया, और मनस्सी और इफ्राइम और शमून के शहरों में बल्कि नफ्ताली तक उनके इर्द गिर्द खंडरों में उसने ऐसा ही किया, और मजबों को ढा दिया और यसरतों और खुदी हुई मूर्तों को तोड़कर धूल कर दिया, और इसराइल के तमाम मुल्क में सूरज की सब मूर्तों को काट डाला। तब यरूशलेम को लौटा, और अपनी सल्तनत के 18वें बरस जब वो मुल्क और हैकल को पाक कर चुका, तो उसने असलिया के बेटे साफन को और शहर के हाकम मासिया और युआखस के बेटे युआख मौर्रख को भेजा कि खुदावंद अपने खुदा के घर की मुरम्मत करें। वो खिलकिया सरदार काहिन के पास आए, और वो नकदी जो खुदा के घर में लाई गई थी, जिसे दरबान लावियों ने मनस्सी और इफ्राइम और इसराइल के सब बाकी लोगों से और तमाम यहूदा और बिन्यामीन और यरूशलेम के बाशिंदों से लेकर जमा किया था, उसके सपुर्द की, और उन्होंने उसे उस कारिंदों के हाथ में सौंपा जो खुदावंद के घर की निगरानी करते थे, और उन कारिंदों ने जो खुदावंद के घर में काम करते थे उसे उस घर की मुरम्मत और दुरुस्त करने में लगाया, यानी उसे भड़ैयों और मेमारों को दिया के घड़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी खरीदें, और उन घरों के लिए जिनको यहूदा के बादशाहों ने उजाड़ दिया था शहतीर बनाएं, और वो मर्द दयानत से काम करते थे, और याहत और अब्दिया लावी जो बनी मेरारी में से थे उनकी निगरानी करते थे, और बनी के हाथ में से ज़िक्रिया और मुसालम काम कराते थे, और लावियों में से वो लोग थे जो बाजों में माहिर थे, और वो बार बरदारों के भी दरोगा थे, और सब किस्म किस्म के काम करने वालों से काम कराते थे, और मुंशी और मुहातमम और दरबान लावियों में से थे। और जब वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई गई थी निकाल रहे थे, तो खिलकिया काहिन को खुदावंद की तौरात की किताब जो मूसा की मार्फत दी गई थी मिली। तब खिलकिया ने साफन मुंशी से कहा कि मैंने खुदावंद के घर में तौरात की किताब पाई है, और खिलकिया ने वो किताब साफन को दी, और साफन वो किताब बादशाह के पास ले गया। फिर उसने बादशाह को ये बताया कि सब कुछ जो तूने अपने नौकरों के सपुर्द किया था उसे वो कर रहे हैं, और वो नकदी जो खुदावंद के घर में मौजूद थी उन्होंने लेकर नाजरों और कारिंदों के हाथ में सौंपी है। फिर साफन मुंशी ने बादशाह से कहा कि खिलकिया काहिन ने मुझे ये किताब दी है, और साफन ने उसमें से बादशाह के हजूर पढ़ा। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने तौरात की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। फिर बादशाह ने खिलकिया और अखीकाम बिन साफन और अब्दून बिन मकाया और साफन मुंशी और बादशाह के नौकर एसाया को ये हुक्म दिया कि जाओ और मेरी तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो इसराइल और यहूदा में बाकी रह गए हैं, इस किताब की बातों के हक में जो मिली है खुदावंद से पूछो, क्योंकि खुदावंद का कहर जो हम पर नाजल हुआ है बड़ा है, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने खुदावंद के कलाम को नहीं माना है कि सब कुछ जो इस किताब में लिखा है उसके मुताबिक करते। तब खिलकिया और वो जिनको बादशाह ने हुक्म किया था खुलदा नबिया के पास जो तोशा खाना के दरोगा सलूम बिन तोकहित बिन खसरा की बीवी थी गए। वो यरूशलेम में मिशना नामी मोहल्ला में रहती थी, सो उन्होंने उससे वो बातें कही। उसने उनसे कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम उस शख्स से जिसने तुमको मेरे पास भेजा है कहो कि खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं इस जगह पर और इसके बाशिंदों पर आफत लाऊंगा, यानी सब लानते जो इस किताब में लिखी हैं, जो उन्होंने शाहे यहूदा के आगे पड़ी है, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया और अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाया, सो मेरा कहर इस मुकाम पर नाजल हुआ है और धीमा ना होगा। रहा शाहे यहूदा जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है, सो तुम उससे यूं कहना कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उन बातों के बारे में जो तूने सुनी हैं, क्योंकि तेरा दिल मोम हो गया और तूने खुदा के हजूर आजिजी की जब तूने उसकी वो बातें सुनी जो उसने इस मुकाम और इसके बाशिंदों के खिलाफ कही हैं, और अपने को मेरे हजूर खाकसार बनाया और अपने कपड़े फाड़कर मेरे आगे रोया, इसलिए मैंने भी तेरी सुन ली है। खुदावंत फरमाता है, देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिलाऊंगा और तू अपनी गौर में सलामती से पहुंचाया जाएगा, और सारी आफत को जो मैं इस मुकाम और इसके बाशिंदों पर लाऊंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। सो उन्होंने ये जवाब बादशाह को पहुंचा दिया। तब बादशाह ने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को बुलवाकर इकट्ठा किया, और बादशाह और सब अहले यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदे काहिन और लावी और सब लोग क्या छोटे क्या बड़े खुदावंत के घर को गए, और उसने जो अहद की किताब खुदावंत के घर में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़ सुनाई। और बादशाह अपनी जगह खड़ा हुआ और खुदावंत के आगे अहद किया कि वो खुदावंत की पैरवी करेगा और उसके हुक्मों और उसकी शहादतों और आइन को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मानेगा, ताकि उस अहद की उन बातों को जो इस किताब में लिखी थी पूरा करे। और उसने उन सबको जो यरूशलेम और बिन्यामीन में मौजूद थे उस अहद में शरीक किया, और यरूशलेम के बाशिंदों ने खुदा अपने बाप दादा के खुदा के अहद के मुताबिक अमल किया, और योसिया ने बनी इसराइल के सब इलाकों में से सब मकरूहात को दफा किया, और जितने इसराइल में मिले उन सबों से इबादत यानी खुदावंद उनके खुदा की इबादत कराई, और वो उसके जीते जी खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की पैरवी से ना हटे।